Parikramyadi Purushan Savasura Chamupati Pranatastad Anugyata Pravivesha Mahabilam. Srila Sukha Devi Goswami said, accompanied by Bali Maharaj, my dear King Brikshit, Prahlad Maharaj, the master of all the chiefs of the demons, took the Supreme Lord's order on his head with folded hands.
श्लोक संख्या 11 और 12 का अनुवाद इस प्रकार है. श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा परीक्षित, समस्त असुर पतियों के स्वामी प्रहलाद महाराज ने बलि महाराज समेत भगवान के आदेश को हाथ जोड़कर सिर पर चढ़ाया.
After saying yes to the Lord, circumambulating him and offering him respectful obeisances, he entered the lower planetary system known as Sutala.
भगवान से हाँ कहकर उनकी प्रदक्षिणा करके तथा उन्हें सादर प्रणाम करके उन्होंने सुतल नामक अधोलोक में प्रवेश किया.
So let us say, after saying yes to the Lord, circumambulating him and offering him respectful obeisances, he entered the lower planetary system known as Sutala.
श्लोक संख्या 12 का अनुवाद. भगवान से हाँ कहकर उनकी प्रदक्षिणा करके तथा उन्हें सादर प्रणाम करके उन्होंने सुतल नामक अधोलोक में प्रवेश किया.
गुरु परंपरा प्रणाम्स प्लीज. श्री गुरुदेव गोस्वामी is saying that Prahlad said yes to the Lord, circumambulating him and offering him respectful obeisances.
यहाँ पे शुकदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं कि प्रहलाद महाराज ने भगवान से हाँ कहकर उन्हें सादर प्रणाम करके उन्होंने सुतल लोक के लिए प्रवेश किया.
Does anyone remember what he said yes to? Because this is a you could call it a hanging statement. After saying yes to the Lord, yes to what? Who remembers?
तो यहाँ पर महाराज पूछ रहे हैं कि किनको पता है कि प्रहलाद महाराज ने किस चीज के लिए हाँ कहा है? किन्हें पता है?
Anybody
कोई हाथ खड़ा करें बता.
Yes, to go to the Sutala Loka, lower planetary system. Arivah.
तो यहाँ सही जवाब दिया है कि उन्होंने भगवान से इस बात के लिए हाँ किया कि वे सुतल लोक जाएंगे.
So the 12th verse is keyed to the 9th verse, where the Supreme Personality of God has said, "My dear son, Prahlad, all good fortune unto you. For the time being, please go to the place known as Sutala, and there enjoy happiness with your grandson, and your other relatives and friends."
तो इस प्रश्न का उत्तर श्लोक संख्या 9 में है. वहां भगवान ने कहा, हे मेरे प्रिय पुत्र प्रहलाद, तुम्हारा मंगल हो. इस समय तुम सुतल नामक स्थान को जाओ और वहां अपने पौत्र एवं अन्य कुटुंबियों तथा मित्रों सहित सुख भोग करो.
So it's significant that Lord Vishnu says, for the time being.
तो यहां पर यह महत्वपूर्ण है कि भगवान विष्णु ने कहा कि कुछ समय के लिए.
In other words, that is not his eternal situation. Sutala Loka is not his eternal situation. Therefore, the Lord says, for the time being.
तो क्योंकि सुतल लोक शाश्वत नहीं है, इसलिए भगवान ने कहा कि कुछ समय के लिए आप वहां जाइए.
Next point is that he says, enjoy happiness with your grandson and your other relatives and friends.
और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि भगवान कह रहे हैं कि आप अपने पौत्र एवं अन्य कुटुंबियों तथा मित्रों सहित सुख भोग करो.
How are we to understand this? Because Vaishnavas are not supposed to have mundane enjoyment.
तो इस बात को कैसे समझा जाए? क्योंकि वैष्णवों से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वे भौतिक सुख को भोगें.
So how many of you think you know have an answer?
तो आप में से कौन इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि भगवान ऐसा क्यों कह?
So the idea is that you will find throughout the Bhagavatam in many places where the Rajarshis, Rajarshi is a combination of the word Raja, king, and Rishi, where the Rajarshis, the kings, or saintly kings, therefore Rajarshi.
तो आप भागवतम में कई जगह यह पाएंगे कि राजाओं के लिए राज ऋषि शब्द प्रयोग किया जाता है। राज ऋषि शब्द का अर्थ है राजा और ऋषि, अर्थात ऐसे राजा जो कि ऋषि के समान है।
Many, many times the Rajarshi is ordered by superiors, usually their father, it could be Swayambhuvana, or perhaps he was one of the ones that was ordered also by Lord Brahma to enjoy family life.
तो आप भागवतम में ऐसे प्रसंग कई बार पाएंगे कि राजाओं को उनके वरिष्ठों और उनके पिता द्वारा यह आदेश दिया जाता है कि वे पारिवारिक जीवन को भोगें, जैसे कि स्वयंभू मनु को उनके पिता ब्रह्मा जी ने कहा। तो इसलिए उन्हें किंग से, राजा से संबोधित किया जाता है।
First glance, this might seem contradictory.
और यहाँ पर अगर पहली बार ऐसे साधारण रूप से देखें तो यह बहुत ही विरोधाभास होता है कि एक ऋषि को
But some of the descendants of Lord Brahma, when ordered to become kings and to enjoy kingly life with family and the whole thing, they say, well, "Hey, wait a minute! Whoa! No thanks! I don't want to become a thing and all this."
तो भागवतम में ऐसे प्रसंग आते हैं कि जब ब्रह्मा जी के वंशजों को ब्रह्मा जी आदेश देते हैं कि आप राजा बनिए और पारिवारिक जीवन को भोगिए, तो वे इसके लिए मना करते हैं कि नहीं नहीं, हमें पारिवारिक जीवन में नहीं जाना है।
Well, Lord Brahma is the original father of the universe.
और ब्रह्मांड के जो वास्तविक पिता हैं वे ब्रह्मा जी हैं।
As such, he has to be a counselor also.
और वे काउंसलर भी हैं।
So, my dear sons and grandsons, you have to perform this duty. And I promise you, you won't get entangled. And sometimes Lord Vishnu will say, also, I promise you, you won't become entangled. You know, just to, you could say, sell them on the idea because they don't want to get entangled. So then either Lord Brahma or the highly placed Manus or Lord Vishnu himself have to say, don't worry, I'll make sure that you don't get entangled.
So, jab jab Brahma ji apne putron ko aur unke apne pautron ko ye aadesh dete hain ki aap इस पारिवारिक जीवन में जाइए, तो वे इसके साथ साथ आश्वासन भी देते हैं भगवान विष्णु या फिर मनु या ब्रह्मा जी कि आप इस भौतिक जीवन में नहीं फंसेंगे।
So then they take these positions with huge protista.
और इसीलिए ऐसे फिर जो वंशज होते हैं वे इस बिना प्रतिष्ठा के, श्यामा जी का बहुत बड़ी प्रतिष्ठा के साथ में इस पद को ग्रहण करते हैं।
Words the same in Hindi, same word in Hindi. So, under order of their superiors, at first with some reluctance, not some major reluctance, but being ordered by superiors, say, all right, I surrender, fine. I mean, okay, I have to do it, you're ordering me, then I have to surrender, you know. But not that they were eager to go after sense gratification is the first point.
तो क्योंकि वरिष्ठों के आदेश को मानते हुए, हालांकि वे शुरुआत में प्रतिरोध कर रहे होते हैं कि उन्हें पारिवारिक जीवन में नहीं जाना है, लेकिन वरिष्ठों के आदेश को मानते हुए वे पारिवारिक जीवन में आते हैं, लेकिन मुख्य बात यह है कि वो इंद्रिय भोग के लिए पारिवारिक जीवन नहीं ग्रहण करते हैं ऐसे राजा।
Secondly, Lord Brahma, Lord Vishnu, and the Manus, they make it clear that, you will be able to live this life surrounded by all this sense enjoyment, but you will live the exemplary life. In other words, you will be Rajarshi, as such you'll more or less be like Acharya.
तो ब्रह्मा जी, मनु और भगवान विष्णु ये आश्वासन देते हैं उनको कि हालांकि आप भौतिक सुख भोगेंगे, लेकिन एक आप आचार्य की भांति होंगे, आप औरों के लिए उदाहरण होंगे कि कैसे एक जीवन जीना चाहिए, और वे शरणागत होकर ये पद स्वीकार कर लेते हैं।
Therefore, you need not worry about entanglement.
और इसलिए फिर वे आश्वासन देते हैं कि इसलिए आपको इस भौतिक बंधन का भय नहीं होना चाहिए।
Same thing with Prithvi Maharaj.
और ऐसा ही उदाहरण पृथ्वी महाराज के जीवन से भी देखने को मिलता है।
He simply showed the ideal leadership as a king.
उन्होंने एक आदर्श नेतृत्व का उदाहरण दिया एक राजा के रूप में.
When Radhanath Swami met with Mr. Modi, he asked him, Mr. Modi asked Radhanath Swami, so how shall I govern the country?
तो जब हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी परम पूजनीय राधानाथ स्वामी जी महाराज से मिले तो उन्होंने भी ये प्रश्न किया कि मुझे सरकार को कैसे चलाना चाहिए.
So Radhanath Swami replied, like Prithu Maharaj.
तो राधानाथ स्वामी जी महाराज ने उत्तर दिया कि जैसे पृथु महाराज ने नेतृत्व किया था राज्य संभाला था उसी प्रकार.
They're also acharya, even though they've got these so-called mundane posts, but because they were jarshi, they're not to be confused with gross materialists.
क्योंकि ये भौतिक पद इन राजाओं के पास होता है तो इनसे हमें यह नहीं कंफ्यूजन होना चाहिए कि ये भी एक भौतिकतावादी व्यक्ति की तरह सुख भोग कर रहे हैं. नहीं, वे राज ऋषि हैं.
Now in modern times there's still a handful of kings on the planet.
तो आधुनिक समय में भी इस ग्रह पर कुछ ही ऐसे मुट्ठी भर राजा हैं जो ऐसे जीवन जीते हैं.
For example, there's the king of Saudi Arabia. Saudi Arabia.
तो ऐसे ही राजा हैं जैसे सऊदी अरेबिया में राजा हैं.
He's hardly a rajarshi, he's a hardcore demon.
समझ लीजिएगा आजकल के जो राजा हैं वे बहुत ही भौतिकतावादी भौतिकतावाद में लिप्त होते हैं. जैसे कि ये सऊदी अरेबिया के राजा हैं वे भी बहुत ही भौतिक इंद्रिय सुख भोग में लगे रहते हैं.
Living the life of a multi-billionaire from oil.
और ये तेल के ऊपर अपना व्यापार करते हैं तो उससे जो धन आता है तो ये करोड़पति जीवन अरबपति जीवन जी रहे हैं.
As far as Lord Vishnu is concerned, Lord Vishnu's attitude is, okay, fine, I'll give you all facility.
तो भगवान विष्णु ने आश्वासन देते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें सब व्यवस्था दूंगा सब साधन दूंगा.
Don't blame me if you go to hell afterwards. Don't blame me. लेकिन call me Allah if you like, but I'm not going to save you.
लेकिन उन सऊदी अरेबिया के ऐसे राजा को भगवान विष्णु कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें सब भौतिक सुख दूंगा लेकिन मुझे दोषारोपण मत करना अगर तुम्हें नर्क में जाना पड़े.
It's the classic enjoy now, pay later plan. Enjoy now, pay later plan.
तो वे ऐसे इस भौतिक सुख को भोगने में लगे रहते हैं.
Like a credit card.
जैसे कि क्रेडिट कार्ड से लोग पैसा लेते हैं उसी प्रकार.
Enjoy off your credit card and then later you have to pay. And then first comes the sukha and then comes the dukkha.
और जैसे क्रेडिट कार्ड से हम पैसे लेके सुख भोग करते हैं लेकिन उसके बाद में हमें उसका मूल्य चुकाना होता है उसी प्रकार अपने कर्मों को हमें भोगना हो. पहले हम सुख भोगते हैं उसके बाद में दुख भी आते हैं.
The modern so-called kings are all on that program. They're demons and they're worthless and they harm the people and they don't benefit them at all. They are the opposite of rajarshi. Opposite, they are asuras.
तो आधुनिक समय के जो राजा हैं वे असुर हैं. वे लोगों का कुछ भला नहीं करते हैं. वे राज ऋषि नहीं हैं. वे खाली लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं.
So Lord Vishnu assures Prahlad, don't worry, you will be rightly situated. And then in the 10th verse he says, you should be able to see me there in Sutala Loka in my usual features with conch shell, disc, club and lotus in my hand. And due to your personal transcendental bliss, due to always personally seeing me, you will have no further bondage to fruitive activities. So here's the benediction that he'll be able to carry his duties without entanglement.
तो यहाँ पर फिर 10वें श्लोक में भगवान प्रह्लाद महाराज को आश्वासन देते हैं कि तुम वहाँ पर मुझे मेरा दर्शन मेरे नित्य रूप का दर्शन कर सकोगे और वहाँ मेरे निरंतर दर्शन से दिव्य आनंद प्राप्त करके तुम कर्म बंधन में नहीं पड़ोगे.
Prabhupada's comments to the purport is very important. As long as one is attached to fruitive activities, he must accept another material body.
तो प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं जब तक व्यक्ति सकाम कर्म में लिप्त रहता है उसे दूसरा भौतिक शरीर स्वीकार करना पड़ता है.
This repeated acceptance of material bodies is called samsara bandhana.
और भौतिक शरीरों की यह बारंबार स्वीकृति संसार बंधन कहलाती है.
Of course, samsara is the cycle of repeated birth and death.
संसार है जन्म मृत्यु का चक्र जो कि निरंतर चलता रहता है.
And bandhana means bondage.
और बंधन का अर्थ है बंधन.
Then he said, Prabhupada says, to stop this, a devotee is advised to see the Supreme Lord constantly.
फिर प्रभुपाद आगे बताते हैं कि इस संसार बंधन को रोकने के लिए भक्त को सलाह दी जाती है कि वह निरंतर भगवान का दर्शन करे.
So how are you going to see the Lord?
तो आप भगवान का दर्शन कैसे करेंगे?
So, next sentence, Prabhupada says, the Kanistha Adhikari or Neophyte devotee is therefore advised to visit the temple every day. You got that?
तो इसलिए प्रभुपाद इस प्रश्न का उत्तर अगली पंक्ति में देते हैं. इसीलिए कनिष्ठ अधिकारी या नव दीक्षित भक्त को प्रतिदिन मंदिर जाने और नियमित रूप से भगवान के स्वरूप का दर्शन करने की सलाह दी जाती है.
And see the form of the Lord regularly.
और नियमित रूप से भगवान के स्वरूप का दर्शन करें.
Here Prabhupada is giving the medicine for the disease. Please download it.
तो प्रभुपाद यहाँ पे हमें रोग की औषधि दे रहे हैं, तो इसे कृपया नोट करें.
So he continues, thus the neophyte devotee can be free from the bondage of fruitive activities.
और इस प्रकार नव दीक्षित भक्त कर्म बंधन से छूट सकता है.
How?
कैसे?
By seeing the deities.
अर्चा विग्रहों के दर्शन करके.
So it shouldn't just be that you work like an ass all day long.
तो ऐसा नहीं है कि आप गधे की तरह पूरे दिन भर मजदूरी करें.
Go home, have dinner.
और फिर घर जाकर के अपना खाना खाएं.
Talk some prajalpa with your wife.
और अपनी पत्नी के साथ में कुछ प्रजल्पा करें.
Show the kids to the back room so they can watch play video games. Get them out of your hair.
और अपने बच्चों को पीछे के कमरे में धकेल दें ताकि वे वीडियो गेम खेलते रहें.
And then you know you see your Gopal on the altar and everything's fine.
और फिर आप अपने गोपाल का दर्शन करें अपने अल्टर में और फिर आप सोचें कि सब कुछ ठीक है.
कृष्ण
भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं ये अथमाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम.
You can run that program, but it doesn't mean you're actually seeing Krishna because you take it too cheaply. That's Kanistha Adhikari.
तो अभी जो बताया गया प्रोग्राम आप कर सकते हैं, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि आप भगवान को देख रहे हैं. भगवान को इतना निम्न मानना ये सही नहीं है.
Better to see the Gopal in your back room, like a lot of initiated devotees even have their Gopal in a back room, and the Samsung widescreen TV is in the living room. I mean, I go to these home programs, that's the way they do it. The Samsung widescreen TV is in the living room where the altar should be, and the deity room is often a closet on the side somewhere. Sometimes you have to ask, where are your deities?
तो जब मैं महाराज बता रहे हैं, जब मैं कुछ नव दीक्षित भक्तों के घर पे भी जाता हूँ तो उनके घर पे मैं देखता हूँ कि आगे के कमरे में बड़ा सारा सैमसंग का एक टीवी लगा होता है जहाँ पर कि अल्टर होना चाहिए भगवान का, और भगवान के अल्टर गोपाल जी को पीछे के कमरे में सबसे पीछे कहीं रखा होता है, और मुझे जाकर के उनसे पूछना पड़ता है कि आपके घर में अल्टर कहाँ पर है.
This is Grihamedhi life.
और यह गृहमेधि जीवन है.
Don't become a Grihamedhi.
Grihamedhi मत बनो.
Better to be a yellow boy than a Grihamedhi.
एक येलो जो हमारे नए भक्त हैं जो ट्रेनिंग ले रहे हैं वो होना अच्छा है इससे इसके बजाय कि गृहमेधि बना जाए.
Prabhupada is giving the formula how to become Krishna conscious, and that is to develop your relationship with the deities. Try to, you know, remove some of the fog from the brain and get Prabhupada's message.
तो प्रभुपाद यहाँ पर सूत्र दे रहे हैं कि किस प्रकार कृष्ण भावनामृत कृष्ण भावना भावित हुआ जा सकता है. तो उसका तरीका है कि आप अर्चा विग्रह से अपना संबंध स्थापित करें.
So then the Lord is assuring him, you'll see me, you'll have no further bondage to fruitive activities.
तो यहाँ पर भगवान प्रहलाद महाराज को आश्वासन दे रहे हैं कि आप मेरा निरंतर दर्शन करेंगे और कर्म बंधन में नहीं पड़ेंगे.
And in the 12th verse it says, Shri Sukadev Goswami said, accompanied by Bali Maharaj, my dear King Prakshit, Prahlad Maharaj, the master of all the chiefs of the demons, took the Supreme Lord's order on his head with folded hands.
और फिर 12वें श्लोक 11वें और 12वें श्लोक के अनुवाद में श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा परीक्षित, समस्त असुर पतियों के स्वामी प्रहलाद महाराज ने बलि महाराज समेत भगवान के आदेश को हाथ जोड़कर सिर पर चढ़ाया।
After saying yes to the Lord, which we already discussed, means saying yes, I surrender. I'll go down to Sitala Loka. So yes means I'm going to go on your order.
तो फिर आगे भगवान से हाँ, प्रहलाद महाराज ने भगवान से हाँ कहा, तो यह हाँ कहना है कि मैं आपके आदेश का पालन करूंगा, और शरणागत होकर वे हाँ कह रहे हैं भगवान।
Well, remember that Prahlad Maharaj and Bali Maharaj are relatives.
आप यह स्मरण रखें कि प्रहलाद महाराज और बलि महाराज आपस में संबंधित संबंध में हैं।
Prahlad Maharaj is the grandfather. He's the grandfather of Bali Maharaj. So they're family.
तो प्रहलाद महाराज बलि महाराज के दादाजी हैं, परम पिता हैं।
They're family.
हाँ, तो वे एक ही परिवार में हैं, वे उनके पिता में हैं।
Going on to the 13th verse. Hari, the Supreme Personality of Godhead, Narayan, thereafter addressed Shukracharya, who was sitting nearby in the midst of the assembly with the priests of the Brahmana, Hota, Udgata, and the Advaryu.
श्लोक संख्या 13 का अनुवाद, तत्पश्चात भगवान हरि या नारायण ने शुक्राचार्य को संबोधित किया, जो पुरोहितों ब्रह्म होता उद्गाता तथा अद्वर्यु के साथ सभा के पास ही बैठे थे।
Oh, Maharaj Parikshit, these priests were all Brahmavadis, followers of the Vedic principles for performing sacrifices.
ये सभी पुरोहित, हे महाराज परीक्षित, ये सभी पुरोहित ब्रह्मवादी थे, अर्थात यज्ञ संपन्न करने के लिए वैदिक सिद्धांतों का पालन करने वाले थे।
Text 14. Brahman santanu shishyasya.
Brahman santanu shishyasya.
Brahman santanu shishyasya.
Brahman santanu shishyasya.
Brahma chidram vitanvataha. Yat yat karmasu vaishanyam. Brahma dvistam samang bhavet. Brahman santanu shishyasyo ya. Brahma chidram vitan vataha. Yat yat karmasu vaishnam yam. Brahma drishtam samang bhavet. Next. Louder. Louder, much louder.
Rama
translation. O best of the Brahmanas, so this is Lord Vishnu addressing Shukracharya.
अनुवाद इस प्रकार है, श्री भगवान ने शुक्राचार्य से कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ शुक्राचार्य।
Please describe the fault or discrepancy in your disciple Bali Maharaj who engaged in performing sacrifices.
आप यज्ञ में लगे अपने शिष्य बलि महाराज की त्रुटि या कमी बतलाइए।
This fault will be nullified when judged in the presence of qualified brahmanas.
इस त्रुटि का निराकरण योग्य ब्राह्मणों की उपस्थिति में निर्णय लेने पर हो जाएगा।
When Bali Maharaj and Prahlad Maharaj had departed for the planet Sutala, Lord Vishnu asked Shukracharya what the fault was in Bali Maharaj for which Shukracharya had cursed him.
तात्पर्य, जब बलि महाराज तथा प्रहलाद महाराज सुतल लोक को चले गए, तो भगवान विष्णु ने शुक्राचार्य से पूछा कि बलि महाराज में वह कौन सी त्रुटि थी जिसके कारण उन्होंने उन्हें शाप दे दिया।
It might be argued that since Bali Maharaj had now left the scene, how could his faults be judged?
यह तर्क किया जा सकता है कि जब बलि महाराज उस स्थान से चले गए, तो उनके दोषों का निर्णय कैसे हो सकता था?
In reply to this, Lord Vishnu informed Shukracharya there was no need for Bali Maharaj's presence, for his faults and discrepancies could be nullified if judged before the Brahmanas.
इसके उत्तर में भगवान विष्णु ने शुक्राचार्य को बताया कि वहां बलि महाराज की उपस्थिति आवश्यक नहीं थी, क्योंकि ब्राह्मणों की उपस्थिति में निर्णय हो जाने पर सारे दोषों एवं त्रुटियों का निराकरण हो जाएगा।
As will be seen in the next verse, Bali Maharaj had no faults. Shukracharya had unnecessarily cursed him.
जैसा कि अगले श्लोक में बताया गया है, बलि महाराज का कोई दोष न था, शुक्राचार्य ने वृथा ही उन्हें शाप दे दिया था।
But Bali Maharaj had no faults. Shukracharya had unnecessarily cursed him.
बलि महाराज का कोई दोष न था, शुक्राचार्य ने वृथा ही उन्हें शाप दे दिया था।
Nonetheless, this was better for Bali Maharaj.
फिर भी बलि महाराज के लिए यह अच्छा ही हुआ।
Being cursed by Shukracharya, Bali Maharaj was deprived of all his possessions, with the result that the Supreme Personality of Godhead favored him for his strong faith and devotional service.
शुक्राचार्य के शाप से उनका सारा ऐश्वर्य जाता रहा, जिससे भगवान ने भक्ति में उनकी प्रगाढ़ भगवान की भक्ति में उनकी प्रगाढ़ श्रद्धा के कारण भगवान ने उन पर कृपा की।
Of course, a devotee is not required to engage in fruitive activities.
निसंदेह भक्त को सकाम कर्मों में लगने की आवश्यकता नहीं पड़ती।
As stated in the Shastra, Sarvar Hanam Achyuteja, Bhagavatam 4:31-14.
जैसा कि शास्त्र का कथन है, सर्वारणम अच्युतेज्य, भागवतम 4:31-14.
By worshipping Achyuta, the Supreme Personality of Godhead, one satisfies everyone.
अच्युत भगवान की पूजा करके हर एक को प्रसन्न किया जा सकता है।
Because Bali Maharaj had satisfied the Supreme Personality of Godhead, there was no discrepancies in his performance of sacrifices.
क्योंकि बलि महाराज ने भगवान को प्रसन्न कर लिया था, अतः उनके यज्ञ करने में कोई दोष नहीं था।
So here we see that Bali Maharaj was faultless for disobeying his guru.
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बलि महाराज का कोई दोष नहीं था, भले ही उन्होंने अपने गुरु का आदेश पालन नहीं किया था।
Remember that Shukracharya was his family guru.
और आप ये याद रखें कि शुक्राचार्य बलि महाराज के पारिवारिक गुरु थे, पुरोहित थे।
But Shukracharya is the epitome of materialistic Brahman.
और शुक्राचार्य एक भौतिकतावादी ब्राह्मण का बहुत बड़ा उदाहरण है।
He is never ever counted in the category of pure devotee, even though He knows who Lord Vishnu is. He knows who Lord Vishnu is, but he is not at all counted in the category of devotee of Vaishnava.
हालांकि शुक्राचार्य जानते हैं कि भगवान विष्णु कौन है, फिर भी उन्हें शुद्ध भक्त की श्रेणी में नहीं गिना जाता।
So we see that knowledge alone is not sufficient for attaining pure bhakti.
तो हम शुक्राचार्य के उदाहरण से देखते हैं कि सिर्फ ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने के लिए।
The guidance by bona fide spiritual master, that is the key.
एक शुद्ध प्रमाणिक गुरु का आश्रय लेना यही कुंजी है।
So in our society we have, first of all, Srila Prabhupada.
तो हमारी सोसाइटी में सबसे पहले हमारे पास श्रील प्रभुपाद हैं ऐसे गुरु।
Then we have his books.
और उनकी पुस्तकें।
Which he said are the law books for 10,000 years.
और जिन्हें कि प्रभुपाद ने बताया है कि ये पुस्तकें लॉ बुक्स हैं अगले 10,000 सालों के लिए।
And then we have his empowered representatives.
और उसके बाद में हमारे पास शिल प्रभुपाद के शक्ति आवेशित कई सारे शिष्य हैं।
Some of whom are acting as Diksha Gurus and many of them who are simply assisting Srila Prabhupada and the Vaishnavas in pushing forward this movement.
और प्रभुपाद के कई सारे शिष्य दीक्षा देने वाले गुरु हैं और कई उन्हें सहयोग दे रहे हैं इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए।
So, Bali Maharaj was following Shastra and he disobeyed Shukracharya, who wanted him to disobey Vamana, actually. When Vamana said, give me 3 steps of land, and Shukracharya panicked.
और जब वामन देव ने 3 पग जमीन मांगी बलि महाराज से, तो शुक्राचार्य को यह बहुत खराब लगा और इस वजह से बलि महाराज ने शास्त्रों का पालन करते हुए अपने गुरु की आज्ञा की अवज्ञा की और भगवान को दान दिया।
It's significant that Shukracharya knew enough about Lord Vishnu that he knew exactly what Lord Vishnu was going to do.
हालांकि शुक्राचार्य जानते थे कि भगवान विष्णु कौन है, लेकिन वे ये नहीं जानते थे कि वे सही में क्या करने वाले हैं।
So he told Bali Maharaj, "This is no ordinary Brahmin boy here. Get it straight."
तो फिर शुक्राचार्य ने बलि महाराज को कहा कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, आप सतर्क हो जाइए।
He is Lord Vishnu in disguise.
और ये एक छंद रूप में भगवान विष्णु हैं।
Be forewarned. Be warned in advance.
और इस तरह से उन्हें पहले ही चेतावनी दे दी थी।
With the first step, he'll take half the universe.
और शुक्राचार्य ने उन्हें बता दिया था कि पहले पग में ये आधा ब्रह्मांड ले लेंगे।
Second step, he'll take the other half of the universe.
और दूसरे अपने कदम में ये दूसरा आधा भाग ब्रह्मांड का ले लेंगे।
Then you're going to be in trouble.
और फिर आप समस्या में पड़ जाएंगे।
Because you offered 3 steps and you haven't got it because you took half the universe with 1 step and half the universe with the other step, and then you're going to be guilty of disobeying a Brahmin and breaking your vow. So then, don't do it.
और फिर शुक्राचार्य ने यह भी बताया कि इस तरह से पूरा ब्रह्मांड 2 कदम में ही भगवान नाप लेंगे, तो तुम तीसरा कदम भगवान को नहीं दे पाओगे और इसलिए तुम अपने आप को दोषी समझोगे और समस्या में पड़ जाओगे।
Here we see the circumstance under which a guru can be rejected. If he's out of line with guru, sadhu and shastra, then he can be rejected. But not just whimsically, then it's maha-aparadha.
तो यहाँ पर यह उदाहरण देखने को मिलता है कि गुरु त्याग कब किया जा सकता है, जब गुरु साधु और शास्त्र से कुछ अलग विभिन्न बात कहे। और यह भी ऐसा नहीं है कि अपने मन घड़न तरीके से गुरु त्याग हो सकता है, ऐसा नहीं है, नहीं तो आप महा अपराध में फंस जाएंगे।
Because Shukracharya was out of line with guru, sadhu, shastra, therefore there was no fault in Bali Maharaj disobeying.
और क्योंकि शुक्राचार्य गुरु साधु शास्त्र की वाणी से अलग थे, अलग बात कह रहे थे, इसलिए उन्हें उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना महा अपराध नहीं है।
Normally, disobeying guru is hatimata, is a huge offense.
और साधारणतया अगर गुरु की आज्ञा की अवज्ञा की जाती है तो यह एक हथिमत अपराध के समान है।
So then how could Bali Maharaj be exempt?
और फिर बलि महाराज को कैसे छूट मिली, वे कैसे छोड़े गए?
The answer is that he knew the Shastra better than, he knew the conclusion of the Shastra better than Shukracharya. Shukracharya certainly knew all the Vedas, but when it came down to understanding the purpose of the Vedas, he flunked.
क्योंकि बलि महाराज शुक्राचार्य से भी अच्छे से सारे शास्त्रों का सार जानते थे, इसलिए उन्हें गुरु अपराध नहीं लगा.
As in the Bhagavad Gita, Krishna advises Arjuna, the Vedas deal primarily with the three modes of material nature. Rise above them, O Arjuna. So he will see the connection.
तो जैसे कि भगवान भगवत गीता में अर्जुन से कहते हैं कि वेद मुख्य रूप से तीन गुणों में डील करते हैं, तो आप इन तीन गुणों से ऊपर उठिए, और यह बात बलि महाराज समझते थे.
अर्जुन वाज एडवाइज्ड डोंट फॉलो ऑल दिस वेदिक प्रोटोकॉल इफ इट डिस्टेंसेस यू फ्रॉम द पाथ ऑफ ट्रू डिवोशनल सर्विस टू मी, कृष्ण सेज.
तो भगवान वहां अर्जुन से कहते हैं कि अगर ये वेदों की वाणी अगर तुम्हें मेरे प्रति शुद्ध भक्ति से विचलित करती है, तो ऐसी वेदिक ऐसे वेदों को तुम पालन मत करो. तो यहाँ वही जो भगवद गीता में प्रसंग आता है, वैसा ही यहाँ पर भी बलि महाराज और शुक्राचार्य के बीच में जो हो रहा है वो भी समान ही है.
Shukracharya is demanding that Bali Maharaj disobey Lord Vishnu.
तो यहाँ पर शुक्राचार्य बलि महाराज से यह मांग रहे हैं कि आप भगवान विष्णु की आज्ञा का उल्लंघन कर दीजिए, उन्हें मत दीजिए कुछ भी.
Bali Maharaj is more intelligent.
लेकिन बलि महाराज उनसे ज्यादा बुद्धिमान हैं.
Materialistic person can be counted as intelligent, no matter how clever they may be. See, there's a difference between being clever and being intelligent.
तो एक भौतिकतावादी कितना ही चतुर क्यों ना हो, लेकिन वह बुद्धिमान नहीं हो सकता जितना कि भक्त बुद्धिमान होता है. तो यहाँ चतुरता और बुद्धिमता में अंतर है.
So don't be clever and at the cost of intelligence.
तो बुद्धिमता के मूल्य पर आप चतुरता मत दिखाइए, अर्थात बुद्धिमानी को मत त्यागिए चतुर बनने के लिए.
Businessmen in this world are very clever. They make all kinds of transactions and cheat their customers, cheat their clients, etc., etc.
तो व्यापारियों को अपने ग्राहकों के साथ में बहुत चतुर रहना होता है, उन्हें कुछ झूठ भी बोलना पड़ता है.
But where is the profit?
लेकिन लाभ कहाँ है?
So that gives birth to this world of cheaters and cheated.
इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि यह दुनिया धोखेबाजों की और धोखा खाने वालों की है. शास्त्रों का यह उद्देश्य है कि क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए.
But the Vedas are a puzzle.
लेकिन वेद एक पहेली के समान है.
You cannot, you means anybody, no one can understand the Vedas without guidance of a bona fide Vaishnava spiritual master.
तो कोई भी वेदों की पहेलियों को नहीं सुलझा सकता बिना एक प्रमाणिक गुरु जो कि वैष्णव है उनकी उनके शरणागत हुए बिना, उनके मार्ग निर्देशन के बिना कोई भी वेदों को नहीं समझ सकता.
So Krishna is therefore advising Arjuna, don't be confused by the flowery words of the Vedas.
तो इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वेदों की ये पुष्प वाणी से आप विमोहित मत हो.
When Krishna says that the Vedas deal primarily with most material nature, that's a really heavy statement. Because the Vedas are worshipped as high, such high shastra in the universe. And Krishna is saying, but wait a minute, don't buy that conception, because it's dealing primarily with the three modes of material nature.
तो हालांकि वेदों की स्तुति की जाती है, वेदों को पूरे ब्रह्मांड में पूजा जाता है, लेकिन भगवान अर्जुन से कहते हैं कि आप वेदों भगवान अर्जुन से कहते हैं कि वेद मुख्य रूप से तीन गुणों में ही विचरण करते हैं.
It's not just a moral treatise, the word treatise. It's not just a moral dissertation, the Vedas.
वेद जो है वे एक नीति संगत शास्त्र नहीं है
or description of religious principles. Or description of religious principles.
या धार्मिक सिद्धांतों का वर्णन
But the Vedas are basically, among other things, although religious principles, jagnas, puja, and all these things are certainly covered, and duties, and so many things are discussed.
हालांकि वेदों में कुछ धार्मिक सिद्धांत जैसे भगवान जगन्नाथ की पूजा इत्यादि हैं और कर्म का भी वर्णन है.
But the bulk of the Vedas is that basically how to do it in encyclopedia. How to do it. You want to build an airplane house, here's how you do it. You want to build a dam, here's how you want to how you do it. You want to run electricity, here's how you do it. It's a how to do it manual on a grand scale.
तो वेदों को मुख्यतः ऐसे समझा जा सकता है कि कैसे किसी चीज का निर्माण करना है इस चीज का वर्णन किया गया है जैसे कि कोई कहे कि एरोप्लेन कैसे बनाया जाना चाहिए इस तरह की चीजें वहां पे वर्णित हैं
so it's so vast therefore because you can imagine that and it's how to do it encyclopedia for the entire universe is going to be vast in scope
तो पूरे ब्रह्मांड के लिए अगर ऐसा वर्णन हो कि हर चीज कैसे की जानी चाहिए जब इस तरह से पूरे ब्रह्मांड का वर्णन होगा तो हम समझ सकते हैं कि ये कितना बृहद होगा कितना विस्तारित होगा
it's in a different league than when you buy a computer fresh out of the box
तो ये वैसे ही है जब आप एक कंप्यूटर बॉक्स से नया कंप्यूटर बॉक्स से बाहर निकालते हैं
you open the box and there's a manual and there how to operate it and what to do and you're supposed to learn all its tricks by reading the manual
और फिर उस बॉक्स के अंदर एक मैनुअल होता है कि किस प्रकार से इस कंप्यूटर को यूज में प्रयोग में लाना है
with the Vedas are a manual describing the operation of the entire universe you can imagine how complex it is
और इसी तरह से वेद भी इस पूरे ब्रह्मांड को कैसे चलाना है कैसे ये चलता है इस चीज का वर्णन करते हैं
so as Krishna is advising Arjuna to reject the Vedas similarly Vali Maharaj has rejected the Vedic conception as presented by Shukracharya
तो जिस तरह से भगवान कृष्ण भगवद गीता में अर्जुन से कहते हैं कि आप वेदों को त्याग दीजिए उनकी वेदों को मत मानिए मेरी भक्ति कीजिए उसी तरह से यहाँ पर भी शुक्राचार्य जब पली महाराज को कहते हैं कि आप भगवान विष्णु को त्याग दीजिए तो ये सिमिलर है लेकिन बली महाराज बहुत बुद्धिमान थे वे समझते थे
from self-realized souls and representatives of self-realized souls.
तो इसीलिए भगवत गीता यथारूप समझना बहुत अनिवार्य है जो कि शुद्ध भगवान के शुद्ध भक्तों द्वारा दी गई है.
Otherwise, total confusion.
अन्यथा अगर हम स्वयं समझने लगे तो हम विमोहित हो जाएंगे.
The Vedas are structured full of contradictions on purpose. On purpose.
तो क्या किया जाना चाहिए इस पर वेदों में बहुत ही कंफ्यूजन्स हैं
to satisfy the mental speculators those who want to twist things so therefore and interpret things the gyanis so to satisfy the gyanis the Vedas are full of contradictions so they can give their twisted interpretations that's why Krishna says forget it just surrender to me sarvadharma prajajam Mamikam Sharanam Braja. He says, forget it. Don't even try to understand all this stuff. Just surrender to me.
तो वेदों में बहुत सारे विरोधाभास हैं ये इसलिए दिए गए हैं कि ज्ञानी अपने कुछ अपनी ही व्याख्या कर सके उनके बारे में और चर्चा कर सके तो इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन से कि आप इन सब में मत पढ़िए वेदों की वाणी में आप सिर्फ मुझे मेरे शरणागत हो जाइए सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज
Bali Maharaj is a pure devotee of the Lord by the mercy of Prahlad.
तो बलि महाराज भी भगवान के शुद्ध भक्त हैं क्योंकि उन पर प्रहलाद महाराज की कृपा हुई थी
And from the position of so-called demon, he becomes Mahajan.
और एक तथाकथित असुर की स्थिति से वे एक महाजन की स्थिति पर पहुंच गए
One of the 12 greatest authorities on the science of Krishna consciousness.
तो कृष्ण भावनामृत के विज्ञान पे जो अथॉरिटीज हैं जो उनमें से 12 महाजनों में से एक बलि महाराज हैं.
Anyone have any questions?
किन्हीं का कोई प्रश्न है?
Yes.
Very nice class, Maharaj. Thank you very much for that.
Brother, please.
Thank you very much, Maharaj, for a wonderful class. Maharaj, I had a question. You told that Bali Maharaj was more intelligent than his guru Shukracharya. Like he was not that clever. But then, how did Bali Maharaj accepted him as his guru? Like he.
Well, Shukracharya, why did Bali Maharaj accept Shukracharya as a guru if Bali Maharaj is more intelligent? You have to understand that Bali Maharaj was locked into a certain social context.
So, Prabhuji ka prashna hai ki agar Bali Maharaj Shukracharya se jyada buddhiman the, to aisa kyun hai ki unhone Bali Maharaj ne Shukracharya ko apne guru ke roop mein swikar kiya? To Maharaj uttar de rahe hain कि बलि महाराज को कुछ सामाजिक बंधनों की वजह से ऐसा करना पड़ा था.
He was not a rebel and he was not going to overthrow social protocol.
तो बलि महाराज उन सामाजिक जो नियम है उनको त्यागने या उनको छोड़ने वाले नहीं थे, वो नहीं छोड़ सकते थे.
Remember that Shukracharya was officially the guru for all varieties of demons and Bali Maharaj is emperor of the demons, therefore as a matter of protocol, he must accept the official guru of the demons as his guru, his protocol.
क्योंकि शुक्राचार्य सभी असुरों के गुरु हैं और क्योंकि बलि महाराज फिर राजा बने तो उन्हें भी इस सामाजिक स्थिति को देखते हुए कि असुरों के गुरु शुक्राचार्य हैं तो इसलिए उन्हें भी शुक्राचार्य को गुरु स्वीकार करना पड़ा.
So it wasn't until Shukracharya actually advised Bali Maharaj to disobey the Supreme Lord that Bali Maharaj had a reason or motive to reject him, because up until then we find family priests with so much jagna, puja, and this thing, that thing, you know. And in fact, one of the ironies which Bali Maharaj pointed out to Shukracharya was, well, you know, you've advised me previously to offer sacrifices to Lord Vishnu. Now you're saying don't give him what he's asking for. Excuse me, but that's totally contradictory.
और जब तक यह घटना नहीं हुई कि शुक्राचार्य ने बलि महाराज से कहा कि आप भगवान विष्णु को वचन मत दीजिए, जब तक यह घटना नहीं हुई तब तक बलि महाराज शुक्राचार्य को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करते थे. और सबसे विरोधाभास यहाँ पर भी होता है कि बलि महाराज शुक्राचार्य से कहते हैं कि पहले तो आप मुझे कहते थे कि भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए यज्ञ कीजिए, और अब वे स्वयं आ गए हैं तो आप कह रहे हैं नहीं नहीं इन्हें मत दो, इन्हें वचन मत दो.
In that sense, he was simply following Shukracharya's prior instruction. So he was following the instruction of his guru, but then when his guru deviated, this is what I'm going to stick with the original, sorry, Guru Maharaj, but I'm going to stick with the original instruction to offer sacrifice to Lord Vishnu. As you instructed me to do that, I'm going to do it.
तो क्योंकि पहले उन्हें यह सिखाया था शुक्राचार्य ने कि भगवान विष्णु के लिए यज्ञ करो, तो वे उस वक्त भी यही समझ रहे थे कि मुझे पुरानी ही आज्ञा का पालन करना चाहिए कि भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करना चाहिए. तो मैं अभी जो शुक्राचार्य उन्हें कह रहे थे कि वचन मत दो, उस आज्ञा का उल्लंघन उन्होंने इसलिए कर दिया.
That surrender to Lord Vishnu is the end goal of life and not all kinds of Vedic rituals and sacrifices, etc. He was therefore more intelligent than Shukracharya.
तो बलि महाराज यह समझ पाए, वे वेदों के स्मार्ट धारणा से ऊपर उठ गए थे. वे समझे कि वेदों का मूल लक्ष्य है भगवान विष्णु की प्रसन्नता, और इसीलिए उन्होंने उस समय भी यही निर्णय लिया कि भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए मुझे ये यज्ञ करना चाहिए. और इस तरह से वे शुक्राचार्य से अधिक बुद्धिमान थे कि वे वेदों के सार को समझ सके.
Shukracharya was interested in maintaining his position. His fear was, wait a minute, if Vamana Dev, if Lord Vishnu takes over your kingdom, and you don't have anything anymore, then I'm out of a job. Don't do it, because then I'll be unemployed.
तो जब वामन देव वहां पर आए थे यज्ञशाला में, तो उस समय शुक्राचार्य ये सोच रहे थे कि अगर बलि महाराज सब कुछ दे देंगे भगवान विष्णु को, तो मेरी तो नौकरी ही चली जाएगी। तो इस वजह से वे डर रहे थे, और इसलिए वे बलि महाराज को कह रहे थे कि नहीं नहीं, आप ये वचन मत दो।
So
यह सब वर्णन आता है भागवतम में, और इसीलिए बलि महाराज ज्यादा बुद्धिमान थे शुक्राचार्य से।
Not a rebel up until he had a reason to reject his guru, only after his guru proved that he was unworthy of being obeyed.
तो ऐसा नहीं है कि बलि महाराज ने अपने गुरु का त्याग ऐसे ही कर दिया, क्यों? उनके पास कारण थे अपने गुरु को त्याग करने के। तो
any other question?
और कोई प्रश्न किसी का?
Yes. Loudly, please.
Thank you, Maharaj ji. I relished only mostly classes from you on Chaitanya Charitamrit, if I'm right. But today I heard all about Srimad Bhagavatam. It was really inspiring for me. Maharaji, my question is Vedas are generally complex, the subject matters are complex and contradictory. So I would like to know some contradictory statements. Okay, what are the contradictory statements? It says like this, and the opposite is this. So I would like to know the contradictory points of Vedas, one or two points.
What's the short version of the question? I'm not a Vedic scholar. As far as contradictions, there are so many instructions how to be a good materialist, but at the same time there are instructions that one should surrender to the Lord Vishnu. That's a contradiction. So it's teaching you how to be a first class materialist on the one hand. If you follow this puja, you'll get this result. If you do this puja, you'll go Surya Loka. You do this puja, you'll go to moon planet, etc. And how to be, you do this puja, you'll have good sons. You know, you'll get lots of money if you do this puja and this jagna. But on the other hand, the Vedas also will say that one should surrender to the Supreme Personality of Godhead, so that's contradictory. How to be a good materialist on the one hand, on the other hand, that one should turn towards Lord Bishop, that's contradictory.
Prabhuji ne bataya ki Maharaj, sadharanatya hum aapse Srimad Bhagavat, Shri Chaitanya Charitamrit par kakshayen sunte hain, lekin aaj humne Srimad Bhagavatam pe aapki katha suni, to mujhe isse bahut prerna mili. Aur fir Prabhuji ka prashn hai ki हम आपने बताया कि वेदों की वाणी बहुत ही जटिल है और बहुत ही विरोधाभास मिलते हैं देखने को, तो एक या दो विरोधाभास आप बताइए. तो महाराज बता रहे हैं कि वेदों में ये वर्णन आता है कि किस तरह से कौन कौन से यज्ञ करके हम सूर्य लोक में भी जा सकते हैं, चंद्र लोक में जा सकते हैं. तो इस तरह से भौतिकतावाद या भौतिक जीवन में कैसे समृद्धि लाई जाए, यह भी वर्णन है वेदों में. और साथ साथ वेदों में यह भी वर्णन है कि भगवान विष्णु की शरण में जाया जाए. तो इस तरह से ये विरोधाभास हैं.
जय 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 ज